हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात का वक्त था। अर्णव धृति को ढूंढते हुए बैक साइड के गार्डन में पहुंचा, जहाँ किनारे पर लगी फूलों की क्यारियों के पास धृति चेयर लगाकर गुमसुम और उदास सी बैठी थी। सुनी निगाहें उन फूलों को दक रही थीं और चेहरे पर मायूसी व वीरानी छाई हुई थी। कुछ को मिस कर रही हो? गुमसुम उदास सी बैठी धृति के कानों में अर्णव की आवाज़ पड़ी तो उसने निगाहें घुमाकर एक नज़र उसे देखा, फिर वापस उन फूलों की ओर नज़रें घुमाते हुए हामी भर दी। आज नहीं तो कल तो उसे यहाँ से जाना ही था ना, फिर ये उदासी और मायूसी क्यों? अर्णव ने उसके सामने चेयर लगाकर बैठते हुए सवाल किया। धृति ने निगाहों ने एक बार फिर उसका रुख किया और चेहरे पर गहरी उदासी के बादल छा गए। जानती हूँ, पर अपने दिल को ये बात कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा। कुश के जाने से दिल में एक वीरानी सी छा गई है। 3 साल बिताए हैं मैंने उसके साथ, बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया था मेरा उसके साथ। मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास और अहम जगह है उसकी, मेरे दिल के बहुत करीब रहा है वो, आदत सी हो गई है मुझे उसकी। अब उसके बिना उसे दूर रहने का सोचकर ही मन उदास हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ? धृति ने अपनी भावनाओं और मनोदशा को शब्दों में व्यक्त किया और बेचारगी से उसे देखने लगी। अर्णव शायद उसकी भावनाओं को समझ रहा था, तभी उसके चेहरे पर संजीदगी भरे भाव उभर आए थे। अपने दिल को समझाओ कि जो हो रहा है वही तुम दोनों के लिए ठीक है, उसका इस वक्त यहाँ से और तुमसे दूर जाना ज़रूरी था ताकि निहारिका उसके करीब जा सके। ये जो कुछ भी हो रहा है इसी में ही तुम दोनों की भलाई है। अभी तुम्हारे और कुश के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर अगर अभी संभल गए तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी और रिश्तों के ये उलझे धागे सुलझ जाएंगे। कुश अपने डैड और माँ के साथ खुश रहेगा और तुम यहाँ अपने परिवार के साथ। फिर फ़ोन पर बात होती रहेगी और हम चलेंगे ना बीच बीच में उनसे मिलने। धृति की हथेली को अपनी हथेलियों के बीच थामे अर्णव बड़े ही प्यार व नरमी से समझा रहा था उसे। धृति ने उसकी बातें सुनकर हामी भरते हुए उसकी बातों पर सहमति जाहिर की और फीका सा मुस्कुरा दी, जबकि चेहरे पर अब भी उदासी के भाव मौजूद थे। अर्णव कुछ पल परेशान सा उसे तकते हुए उसकी इस उदासी को दूर करने का तरीका ढूंढता रहा, फिर अचानक ही उसके मन में कुछ आया और उसकी आंखें जुगनू सी चमक उठीं। वैसे ये तुम्हारी इस उदासी को दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? धृति ने तुरंत ही सवाल किया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। अर्णव ने बारी बारी उसकी आंखों की गहराई में झांका और हौले से मुस्कुरा दिया। हम बेबी प्लान कर लेते हैं। धृति पहले तो उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई, आंखें फाड़े अचंभित सी उसे देखती ही रह गई, फिर अर्णव की हथेलियों के बीच से अपनी हथेली छुड़ाते हुए खींचते हुए मुंह बना लिया। कुछ भी मत कहिए। धृति के द्वारा अपनी बात को यूं हवा में उड़ाए जाने पर अर्णव ने तुरंत ही वापस उसकी हथेलियों को थामते हुए गंभीरता से कहा, अरे मैं सीरियस हूँ यार, मजाक नहीं कर रहा। धृति ने अब की बार आंखें तीखी निगाहों से उसे घूरा और व्यंग्य भरी मुस्कान उसके लबों पर उभर आई। हाँ, कल शादी हुई है हमारी और आज आप बेबी की प्लानिंग भी करने लगे, कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं अब आप मुझे, धृति ने तंजिया लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अर्णव झल्ला उठा। ओह कम ऑन धृति, तुम शायद भूल रही हो कि हमारी शादी को 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और कुछ महीने बाद 5 साल हो जाएंगे। और शायद आप भूल रहे हैं कि शादी भले 4-5 साल पहले हुई हो, पर हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता अभी बना है। अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत ही हुई है, इतनी जल्दी मुझे बेबी नहीं चाहिए। पहले मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, इन खूबसूरत लम्हों को खुलकर जीना चाहती हूँ, आपके साथ ढेरों प्यार भरी हसीन यादें बनाना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी के इस फेज को एंजॉय करना चाहती हूँ, हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगी। शुरू में धृति कुछ खींची हुई लग रही थी, पर अंत तक आते आते चेहरे पर गंभीरता के भाव उभर आए थे और बेहद संजीदा लग रही थी वो। अर्णव पल भर उसे तकता रहा, उसका शैतानी दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और जल्दी ही उसके दिमाग में एक और ढांसू आइडिया आ चुका था। ओके, तो इसके अलावा एक और रास्ता है मेरे पास। अब क्या है? धृति चिल्लाई कि पक्का फिर से ऐसा ही कोई उल्टा सीधा रास्ता निकाला होगा उसने, पर अर्णव ने उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऑफिस ज्वाइन कर लो मेरे साथ, ज्यादातर वक्त बिजी रहोगी, मेरे साथ रहोगी तो मन लगा रहेगा तुम्हारा। आइडिया इतना भी बुरा नहीं था, पर धृति को 1 सेकंड का वक्त ना लगा उसे ठुकराने में। जी नहीं, अभी मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करने वाली, पहले आप मुझे हनीमून पर लेकर जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ वक्त यहाँ हमारे घर में बिताऊंगी, हमारे रिश्ते पर अपना पूरा ध्यान दूंगी, उसके बाद जाकर ऑफिस ज्वाइन करूंगी। अच्छा, तो जब इतनी प्लानिंग कर ही ली है तुमने, तो ये भी बता दो कि हनीमून पर कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा। अर्णव ने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसी बहाने धृति का ध्यान भटक रहा था और मूड भी बदल रहा था। अर्णव के सवाल पर धृति ने तपाक से जवाब दिया, दार्जिलिंग। अग्रही पल अर्नव ने सख्ती से एतराज जता दिया। बिल्कुल नहीं, कोई और जगह चुनो। क्यों, दार्जिलिंग में क्या प्रॉब्लम है? धृति के रुख पर नाराजगी के भाव उभरे थे और वो अपने गालों को भुलाए अर्नव को घूरने लगी थी, पर अर्नव अपने फैसले पर टिका रहा। इतने वक्त वही रहकर आए हैं हम और पहले घूम भी चुके हैं। जब हनीमून पर जाना ही है तो किसी ऐसी जगह चलेंगे जहां हम पहले कभी नहीं गए। अर्नव की बात जैसे ही पूरी हुई, धृति ने पल भर सोचने के बाद आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखा। ओह, तो मालदीव लेकर चलेंगे आप मुझे हनीमून पर? हनीमून के लिए वो अच्छी जगह है। धृति की सितारों सी चमकती आंखें बड़ी ही उम्मीद से अर्नव को तकने लगी थी। उसकी खनकती आवाज उसकी खुशी जाहिर कर रही थी और चेहरे पर एक्साइटमेंट झलक रही थी, जिसे देखकर अर्नव मुस्कुरा दिया। चलिए, आपको मालदीव ही ले चलेंगे, पर अभी तो हमारे हनीमून पर जाने में टाइम है, तब तक यहीं अपने हनीमून पीरियड को एंजॉय करते हैं। अर्नव ने चाहत भरी निगाहों से उसे देखा और दिलकश मुस्कान लबों पर सजाए धृति की ओर झुकने लगा। पर इससे पहले कि वो धृति के करीब जाकर अपने दिल की हसरतों को पूरा कर पाता, उसके इरादे को भांपते हुए धृति उसके सीने पर हथेली रखते हुए उसे खुद से दूर करने लगी और उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। दूर हटिए आप, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कभी थोड़ी शर्म भी कर लिया कीजिए और कुछ भी करने से पहले जगह और हालात भी देख लिया कीजिए। अच्छी खासी फटकार लगी थी उसे और अर्नव की शक्ल पर 12 बज गए थे। उसने मासूम सी सूरत बनाकर बेचारगी से उसे देखा। कोई भी नहीं है यहाँ हमारे अलावा, तो क्या आप अपनी मनमानी करेंगे? अगर कोई आ गया तो? धृति ने आंखें तरेर कर उसे घूरा। रहम खाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी वो। अर्नव मुंह बनाते हुए वापस पीछे होकर बैठ गया और अपने गालों को गुब्बारे जैसे फुला लिया। शायद इस तरह से वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। धृति कुछ पल उसे देखती रही, फिर उठकर उसकी गोद में बैठ गई और अपनी पतली गोरी बाहों को उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटते हुए सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाए बड़े ही प्यार से उसे देखने लगी। लीजिए, आ गई मैं खुद आपके पास। क्यों आई हो? मैंने तो नहीं बुलाया था, और अब तुम मेरे करीब कैसे चली आई? अब नहीं आएगा कोई यहाँ? अर्नव ने बेरुखी भरे उखड़े अंदाज में कहा और नाराजगी भरी निगाहों से उसे घूरते हुए अपनी गर्दन पर से उसकी बाहों को हटाने लगा। पर धृति ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए उसे कसके जकड़ लिया। आएगा तो आने दीजिए, अपने पति के साथ हूं मैं, हक है मेरा आप पर, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपके जो चाहे और जहां मर्जी करूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता और ना ही मुझे किसी से कोई फर्क पड़ता है।
धृति ने उसकी निगाहों में झांकते हुए पूरे आत्मविश्वास का साथ जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्नव ने खींचते हुए घूरा। अगले ही पल चेहरे पर हैरानी के भाव लिए सामने की ओर देखते हुए तेज आवाज में बोल पड़ा,